नमस्कार भारत, आज है 18 जुलाई दिन गुरुवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। कुलभूषण जाधव मामले पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को भारत ने बताया बड़ी कामयाबी।
एक रूल ऑफ लॉ का अगर आदर करें तो ये मसला हल हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए, जो हो गया हो गया, अब यहाँ से आगे बढ़ना।
मगर पाकिस्तान का दावा, अदालत ने मौत की सजा देने के उनके फैसले को रद्द नहीं किया।
ICJ ने जो हमारी मिलिट्री कोर्ट का फैसला है उसको मनसूख नहीं किया और हिंदुस्तान की दरखास्त थी कि उसे अनल किया जाए, यानी कि मनसूख किया जाए।
बिहार में भारी बारिश के बाद सीमांचल के बड़े इलाके बाढ़ की चपेट में।
जब पनिया जहाद को सब बुला रहा था तो सब बोले कि एक घंटा में आ रहा, आधा घंटा में, कोई नहीं बचा, बस 4-5 आदमी बचे, आज कितना आदमी दहाके चला।
सुनिएगा दुनिया जहान, मगर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार गुरप्रीत सैनी से। कुलभूषण जाधव मामले में नीदरलैंड्स की हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फांसी पर रोक जारी रखते हुए पाकिस्तान से इस पर फिर से विचार करने को कहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस फैसले को अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि भारत ने कुलभूषण जाधव को रिहा करने और भारत भेजे जाने की मांग की थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस फैसले को भारत की जीत बताया है। अमरीका तुर्की को नेटो के F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर रहा है, क्योंकि तुर्की ने रूस से मिसाइलें खरीदने का फैसला किया है। पेंटागन का कहना है कि इस डील को रद्द करने से अमरीका को $60 करोड़ का नुकसान होगा। तुर्की ने पिछले हफ्ते ही रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप ली है, जबकि तुर्की को पता था कि अमेरिका उसे 100 से ज्यादा सैन्य एयरक्राफ्ट बेचने की योजना बना रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी एलन लार्ड ने कहा,
Last Friday, the United States learned that Turkey accepted delivery of a Russian S-400 air.
पिछले शुक्रवार को अमेरिका को पता चला कि तुर्की ने एक रूसी S-400 एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है। मैं तीन चीजें बताना चाहती हूँ। पहली, अमेरिका को F-35 प्रोग्राम और सप्लाई चेन पर पूरा भरोसा है। दूसरा, अमेरिका और दूसरे F-35 सहयोगियों ने मिलकर तुर्की को प्रोग्राम से निलंबित करने का फैसला किया है और उसे प्रोग्राम से औपचारिक रूप से बाहर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तीसरी बात ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमरीका अब भी तुर्की के साथ अपनी सामरिक भागीदारी की कद्र करता है। ये थे अमरीका के रक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी एलन लॉर्ड के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। कांगो गणराज्य में इबोला के प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रभावित इलाकों की सीमाओं को सील नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान होगा। WHO ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र से बाहर इबोला फैलने का खतरा कम है। इबोला से कांगो में 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी हफ्ते गोमा में भी एक मामला सामने आया, जहां 1,000,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। WHO के जनसंचार अधिकारी डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने BBC को बताया कि आपातकाल समिति ने देशों से इस घोषणा पर ओवर रिएक्ट ना करने की अपील की है। उन्होंने कहा,
We have seen in the past that it's been misinterpreted and it's turned into panic. And in this statement,
हमने देखा कि पिछली बार इसे गलत तरीके से लिया गया और लोगों में घबराहट फैल गई। आपातकाल समिति के सदस्यों ने जब अपने बयान में बताया कि WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, तब उन्होंने ये भी साफ कहा कि उन्होंने दुनिया के सभी देशों को सुझाव दिया है कि वो ट्रांसपोर्ट बंद ना करें और एकदम से पाबंदियां ना लगाएं, बल्कि मैं दुनिया के दूसरे देशों से कहना चाहता हूं कि घबराएं नहीं, हमारी मदद करें। ये थे WHO के जनसंचार अधिकारी डॉक्टर मार्गरेट हैरिस। अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने मेक्सिको के कुख्यात ड्रग्स तस्कर क्वाकिन अलचैपो गुस्मैन को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई है। 62 वर्षीय अलचैपो को फरवरी में न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट ने अमेरिका में गिरोह के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स तस्करी करवाने और अवैध रूप से हथियार रखने, मनी लॉन्ड्रिंग के 10 विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया था। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लाइव, और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। पाकिस्तान में पिछले 3 साल और 4 महीने से कैद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया। 16 में से 15 न्यायाधीशों ने भारत की इस दलील को स्वीकार किया कि पाकिस्तान में जिस तरह से कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कुलभूषण जाधव को 2016 के मार्च में गिरफ्तार किया गया था और 1 साल बाद पाकिस्तान में एक फौजी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। भारत इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गया, अदालत ने मौत की सजा पर रोक लगवा दी। फिर भारत पाकिस्तान दोनों ने वहां जुर्म की और उसके बाद कल शाम अदालत ने फैसला सुनाया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख अब्दुल काबी अहमद यूसुफ।
द कोर्ट हैज ऑलरेडी फाउंड दैट पाकिस्तान एक्टेड इन ब्रीच ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर आर्टिकल।
अदालत ने पाया कि पाकिस्तान ने जिनेवा संधि में तय अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। पहले मिस्टर जाधव को उनके अधिकारों की सूचना नहीं देकर और फिर भारत को तत्काल मिस्टर जाधव की गिरफ्तारी की खबर ना देकर और आखिर में मिस्टर जाधव को उच्चायोग से संपर्क नहीं करने देकर ताकि वो अपने कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख अब्दुल काबी अहमद यूसुफ के शब्द। अदालत ने साथ ही कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से संपर्क कराने की भारत की मांग को भी मान लिया। साथ ही कहा कि फांसी की सजा पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान इसकी दोबारा समीक्षा नहीं कर लेता। फैसला आने के बाद भारत में बधाइयों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि सत्य और न्याय की जीत हुई है और उन्हें यकीन है कि कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा। हेग में कुलभूषण जाधव का केस लड़ने वाले वकील हरीश सालवे ने उम्मीद जताई है कि अब ये मामला जल्दी ही सुलझ जाएगा। फैसले के बाद हेग में बीबीसी संवाददाता गगन सभरवाल ने हरीश सालवे से बात की और पूछा कि कल फैसले की घड़ी में उन्हें कैसा लग रहा था।
एक्सपेक्ट सब करते हैं, जैसे ना बच्चे एग्जाम देके आते हैं तो सबको लगता है नंबर अच्छे आएंगे, पर जब जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है जान निकल जाती है सबकी, तो हमारा भी वही हाल होता है।
अच्छा, अभी व्हाट नेक्स्ट मिस्टर जाधव के लिए, अगला स्टेप क्या होगा?
अगला स्टेप ये होगा, आप देख रहे हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद ने कोई कम्युनिके दिया है कि वो उन्होंने पूरा अपीयर किए हैं, कोऑपरेट किया है और वो जजमेंट की इज्जत करेंगे। तो अब देखना है उनको कि दिल से अगर आदर करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एक रूल ऑफ लॉ का अगर आदर करें तो ये मसला हल हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए, जो हो गया हो गया, अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए।
अच्छा, और अगर उनको काउंसलर एक्सेस आज उन्होंने बोला कि उनको मिलना चाहिए, क्या पाकिस्तान वो रिफ्यूज कर सकता है और इंडिया के क्या स्टेप्स हो सकते हैं?
भाई अगर रिफ्यूज करेगा तो जो फैसला है उसका उल्लंघन होगा, अगर वो होगा तो फिर हमारे पास रेमेडीज हैं, हम कोर्ट पे जाके फर्दर डायरेक्शंस मांग सकते हैं, और अगर बिल्कुल ही ना माने तो फिर उसका प्रोविजन है यूएन में सैंक्शन वगैरह की प्रोसीजर। पर देखिए पॉजिटिव सोचिए, आज जजमेंट पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव सोचिए, पाकिस्तान के भी पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, हो सकता है ये सब मामला सुलझ जाए।
मिस्टर जाधव ने अपनी फैमिली को 2017 में देखा था, तो अभी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चाहते हैं?
सबसे ज़्यादा तो जाके उनको बिना किसी कांच के, बिना किसी क्यूबिकल के, बिना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लोगों के मिलना चाह रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं, अगर मेरा बेटा वहाँ होता तो मैं तो यही चाहता।
अच्छा, और आज का जो विक्ट्री है कितना बड़ा है इंडिया के लिए, आपके लिए, जाधव फैमिली के लिए?
देखिए ये रूल ऑफ लॉ के लिए विक्ट्री है, एक सिस्टम के लिए विक्ट्री है। आज जो दुनिया में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, तब एक ऐसा कोर्ट ऊपर आके कंट्रीज़ का एक एमिकेबल रेजोल्यूशन, इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के बीच में भी एक एमिकेबल रेजोल्यूशन एक कोर्ट के दायरे में, एक कानून के दायरे में हो जाए, इसके लिए एक बहुत बड़ा ये पॉजिटिव स्टेप है।
लास्ट क्वेश्चन, आपने क्यों डिसाइड किया ये केस लेने के लिए? मैंने कहा पे पढ़ा था कि आपने सिर्फ 1 रुपया शायद चार्ज किया।
नहीं मिला अभी तक, मुझे
अभी तक नहीं मिला। अच्छा,
सुषमा जी से अभी बात हुई, उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब आओगे दिल्ली तो दे दूंगी।
अच्छा, लेकिन आपने क्यों किया डिसाइड किया?
देखिए मैं एज अ लॉयर ये एक एज अ कॉज किया, भगवान की दुआ से कई क्लाइंट मिल जाते हैं जो काफी फीस दे लेते हैं, कभी कभी कॉज के भी काम करने चाहिए।
कुलभूषण जाधव का केस लड़ने वाले वकील हरीश सालवे। मगर ये दिलचस्प है कि पाकिस्तान में दूसरी ही प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला पाकिस्तानी न्याय व्यवस्था में उनके भरोसे को दिखाता है।
आईसीजे ने जो हमारी मिलिट्री कोर्ट का फैसला है उसको मनसूख नहीं किया और हिंदुस्तान की दरखास्त थी, भारत की दरखास्त थी कि उसे अनल किया जाए, यानी कि मनसूख किया जाए। अब ऐसा नहीं हुआ तो इसका भी एक बहुत एक मैं समझता हूं कि एक खुशगवार कमेंट्री है पाकिस्तान के पूरे लीगल सिस्टम पर कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो बड़ा ठोस है और सफाई का और अपनी बेगुनाही साबित करने का हक मौजूद है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। तो ऐसे में जबकि भारत में मीडिया फैसले को भारत की जीत के तौर पर पेश कर रहा था, पाकिस्तान में मीडिया क्या बता रहा था? ये सवाल पूछा हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता शुमाइला कुरैशी से, जाफरी से।
पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। ये वर्डिक्ट जो है ये कई घंटे सुनाया जाता रहा और अंग्रेजी में था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो सभी मेनस्ट्रीम चैनल्स हैं वो इसको लाइव ब्रॉडकास्ट करते रहे और उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके इसके साथ में टिकल्स जो है वो चलाते गए और साथ साथ लम्हा ब लम्हा जो है ऑडियंस को बाखबर रखा गया क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे और मेनस्ट्रीम मीडिया में इसको पाकिस्तान की विक्ट्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो प्ली थी कि कुलभूषण जाधव को किया जाए और जो एनाल किया जाए जो मिलिट्री कोर्ट ने पाकिस्तान में फैसला दिया है, इस प्ली को नहीं माना गया है और यही पाकिस्तान की विक्ट्री है।
ये थी बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। तो भारत जिस फैसले को अपनी जीत बता रहा है, पाकिस्तान उसके अपने पक्ष में होने का दावा कर रहा है, क्यों है ऐसा? ये पूछा दिलनवाज पाशा ने पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा से, जो कराची में भारत के वाणिज्यिक दूतावास में भारत के दूत रह चुके हैं।
देखिए, पाकिस्तान तो सूरज अगर है तो उसको चांद बना देता है, चांद अगर है तो सूरज बना देता है। पर अगर कोई पाकिस्तान में ध्यान से सुने आईसीजे का फैसला तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आईसीजे के इतिहास में इतना खुला और इतना साफ किसी देश के बारे में आईसीजे ने फैसला दिया हो। तो हर दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने पाकिस्तान को गलत करार दिया है, पाकिस्तान को बेइज्जती भरे शब्द ऑलमोस्ट यूज किए हैं। तो अगर उससे वो इतना सेटिस्फाइड है तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। पर इससे हट के एक और चीज है कि ये जो फैसला है ये ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ने जो किया है उसके कनेक्शन में है, ये फैसला पूरी दुनिया के देशों के लिए है, ह्यूमन राइट्स के लिए है। कल को फर्ज कर लीजिए कि अमेरिका का कोई सिटीजन चाइना में जाता है और उसको चाइना इस तरह गिरफ्तार कर लेती है, तो आईसीजे का यही जो फैसला है ये कोट किया जाएगा और यही प्रेसिडेंट जो है वो चाइना को भी मानना पड़ेगा। या चाइना का कोई सिटीजन किसी और कंट्री में जाता है और उसके साथ ये सलूक होता है तो चाइना भी यही कोट करेगा।
कुलभूषण जाधव का जो मामला है इसको लेकर भारत और पाकिस्तान में दोनों ओर दिलचस्पी बहुत थी, क्या वजह इसकी आपको लगती है कि इस मामले में इतनी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ गई है?
देखिए, कुलभूषण जाधव अकेले नहीं है पर एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स थे। अभी एक हमारा यंग लड़का हामिद अंसारी, उसको बिना मतलब के लिए उन्होंने 6 साल कैद में रखा और कड़ी कैद में रखा और फिर जाके बहुत एहसान जता के उसको छोड़ा उन्होंने। उससे पहले सर्वजीत सिंह और चमेल सिंह जिनको उनके कोर्ट ने बरी कर दिया था उसको पाकिस्तानी स्टेट ने प्रिजन के अंदर मार डाला। एक देखिए निजामुद्दीन के जो चीफ प्रीस्ट हैं वो बेचारे पाकिस्तान गए, उनको वो ISI ने अगवा करके किडनैप करके कहीं ले गए, 3-4 दिन उनको काफी मार पिटाई की। तो इंडियन नेशनल्स जो है वो अनसेफ है पाकिस्तान में और वो सीरीज जो है उबल के कुलभूषण यादव के केस में आई, तो इंडिया में तो इसलिए इंटरेस्ट था। जहां तक पाकिस्तान की सवाल है तो पाकिस्तान तो एक प्रोपेगेंडा टूल बना लिया था, उन्होंने कहा था कि हाँ देखिए कुलभूषण यादव है ये टेररिस्ट है, इसने पता नहीं कहां कहां बॉम्ब फेंके और ये किया, तो इंडिया हमको एक्यूज करता है, हम तो ये सामने सबूत लाए हैं।
क्या इस फैसले के बाद कुलभूषण जाधव की किसी भी तरह से कितने भी समय में भारत लौटने की उम्मीद जगी है?
देखिए, कोई और देश होता तो पहली फ्लाइट से कुलभूषण जाधव को वापस भेज देता, पर आपने देखा है जिस तरह उनकी माँ और उनकी पत्नी को सलूक किया गया था, तो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करना कि वो कोई ठीक कदम उठाएंगे उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए, पर क्या ये हो पाएगा या आने वाला समय बताएगा।
ये थे पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा। और बता दें कि आज लोकसभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बारे में बयान देंगे।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
बिहार में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। नेपाल और सीमांचल में भारी बरसात के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई जगहों पर तटबंध और सुरक्षा बांध टूट गए हैं। टूटे तटबंधों से पानी तेज रफ्तार में आगे बढ़ता जा रहा है। हर दिन गांव के गांव डूब रहे हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, मगर वो नाकाफी है। मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों से बीबीसी संवाददाता नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
यह शोर खाना लेने के लिए हो रहा है और खाना लेने के लिए इतना जतन कर रहे लोग वे लोग हैं जिनके घर बाढ़ में डूब चुके हैं। मधुबनी के कमला बलान के पास जिस जगह पर तटबंध टूटा है, वहां लोगों ने तटबंध को ही अब अपना जीवन बना लिया है। जान माल समेत तंबू गाड़ कर वहीं टिक गए हैं। शनिवार की रात में जब तटबंध टूटा था, नरुवार और आसपास के गाँव में तबाही मच गई थी। बाढ़ में कई लोगों के घर बह गए, कईयों के मवेशी और कुछ के परिजन तो अभी तक लापता हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिशें चल रही हैं। तटबंध टूटने के बाद क्या हुआ था, नरुवार के ग्रामीणों से बीबीसी ने बात की।
बाबू धार बह गए घर में।
आप ही का घर था?
हाँ, ते घर छे बाबू।
कब हुआ है?
11 बजे रात को हुआ था। छोर पे बहुत आदमी था, कोई आवाज नहीं दिया।
नहीं बाबू, बुझा
कोई नहीं दिया। हम लोगों का चार तला घर था, दो साइड गाय है, दूसरे के छत पे किसी ने कुछ नहीं किया। जब पनिया जाहिद को सब बुला रहा था तो सब बोले कि एक घंटा में आ रहा है, आधा घंटा में। कोई नहीं बचा, बस चार पांच आदमी बचे। कितना आदमी दहा के चला गया, कोई नहीं बचा
है। घर में से अपना कुछ नहीं बाहर
नहीं,
एक महीना शादी का हुआ है, 10 लाख रुपया लेके मेरी मम्मी शादी किया, कुछ नहीं बचा है। बस ये कपड़ा साड़ी भी नहीं था, कोई दिया है यहीं पे, कुछ नहीं बचा है।
वैसे तो सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य पिछले 3 दिनों से चल रहा है, मगर बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें भी सबसे अधिक इसी को लेकर हैं।
हमारा सबका खाना भी आ रहा है, वहीं पे एनएच पे गिरा के चला जा रहा है।
यहाँ तक नहीं,
नहीं यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है। जहाँ पे हमारा सबका नुकसान हुआ वहाँ पे कुछ आया ही नहीं रहा है, जहाँ पे नहीं नुकसान हुआ वहाँ पे छोड़ रहे हैं।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बाढ़ से अभी तक 33 लोगों के मौत की सूचना है। 13 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं और करीब 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। NDRF और SDRF की टुकड़ियां रेस्क्यू का काम कर रही हैं। झंझारपुर में तैनात NDRF की टीम के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार से हमने पूछा कि रेस्क्यू में क्या दिक्कतें आ रही हैं और अभी भी कितने लोग अंदर फंसे हैं।
फंसे होने की संभावना तो अभी किसी की नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ पे 6 बोट चल रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। कोई भी रेस्क्यू ऑफिसर कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। टूटा था जिस दिन बांध को, उस दिन का ये कंडीशन था, आज के कंडीशन में नॉर्मल है।
पिछले 2 दिनों की तुलना में नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है, घरों के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया है, मगर लोगों की चिंता आने वाले कल की है। बाढ़ में सब कुछ बह चुका है, जीने के लिए फिर से नया इंतजाम करना। नीरज प्रियदर्शी, BBC मधुबनी।
बिहार में बाढ़ से उपजी स्थिति। और आइए अब नजर डालते हैं आज भारतीय अखबारों की प्रमुख खबरों पर। दिल्ली से छपे अखबारों पर नजर दौड़ा चुकी हैं गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत, क्या खबरें हैं आज कुलभूषण जाधव
जी? इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है जस्टिस इन इंटरनेशनल कोर्ट।
जी,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को उन्होंने नाम बदल के लिख दिया, जिसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मिला न्याय। तो ऐसी कुछ हेडलाइन सारे अखबारों में दिख रही है कि स्वागत किया गया है जो ICJ का जो फैसला है उसका। और इसके अलावा उनके परिवार का एक जो है कोट लगाया गया है कि जब तक जाधव वापस नहीं आते डर तो रहेगा ही। जो मुंबई में उनके अंकल रहते हैं उन्होंने कहा है ये कि जब तक वो जिंदा पाकिस्तान से वापस आते हुए उन्हें नहीं देख लेते हैं जब तक उनके मन में डर रहेगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान से एक और खबर है कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले हाफिज सईद को पाकिस्तान के लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है और 30 दिन के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और इसके साथ ही कर्नाटक से जुड़ी खबरें सभी अखबारों में दिख रही हैं कि कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया कि 15 जो बागी विधायक है सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है, और इसी के साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हें भी छूट दे दी गई है निर्णय लेने की। तो कई अखबार ये हेडलाइन लगा रहे हैं कि भाई जो कुमारस्वामी की
फैसले की घड़ी है,
हाँ,
इस तरह से
कुछ लोग कह रहे गिर जाएगी या क्या होगा, मतलब इस तरीके की जो हेडलाइंस है। और एक ये भी द हिंदू में है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस बटी हुई कल नजर आई। जो ये अभिषेक मनु सिंघवी हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि जो ये पार्टी की जीत है उन्होंने इसे बताया, लेकिन जो सुरजेवाला है उन्होंने डरावनी न्यायिक मिसाल कहा, क्योंकि जो सिंघवी थे वो विधानसभा स्पीकर की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर कोर्ट में थे।
अच्छा,
इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो उसमें अमित शाह का एक बयान लगा है कि समझौता केस वॉज मैनिपुलेटेड, अमित शाह ने ये कहा है। राज्यसभा में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल 2019 पर जब 3 घंटे कल चर्चा चल रही थी तो NIA को अधिक ताकत दिए जाने के मसले पर चिंता जताई गई और कहा गया कि इस कानून का कुछ समुदाय के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि NIA समझौता ब्लास्ट मामले की जाँच करने में नाकाम रही थी। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि समझौता ब्लास्ट मामले को कुछ ना कुछ ऐसा बना दिया गया उसे कि एक धर्म विशेष के साथ उसे जोड़ने की कोशिश की गई और जो लोग अभियुक्त थे उन्हें बरी करके जो नहीं थे उन्हें अभियुक्त बना दिया गया, और इसकी वजह से जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है कि बीफ फेस्ट के लिए फेसबुक पर निमंत्रण डाला और युवक गिरफ्तार। 33 वर्षीय युवक ये तमिलनाडु के हैं जिन्होंने 13 जुलाई को ये पोस्ट डाला था और पुलिस ने फिर एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी सुरेंद्र राजन की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों को फेस्टिवल के लिए आमंत्रित किया था। इसके अलावा हार्ड कौर जो ब्रिटेन स्थित पंजाबी रैपर हैं, तरन कौर ढिल्लन उनका असली नाम है, उन्होंने जो अलगाववादी 2020 रेफरेंडम फॉर खालिस्तान यानी कि जो खालिस्तान सिखों का अलग देश बनाने का जो है उस मुहिम का समर्थन कर दिया है। तो ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स में। जी
गुरप्रीत जी, अभी के लिए इतना ही क्योंकि अब समय हो चला है दुनिया जहान का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दुनिया जहान में आज चर्चा होगी अफगानिस्तान की, जहां फिजा बदल रही है। बीते 18 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए गंभीर नजर आ रहा है। तालिबान के साथ अमेरिका की 7 दौर की बातचीत हो चुकी है और समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो बताते हैं कि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी हो सकती है और इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान की भूमिकाएं बदल जाएंगी। ट्रंप प्रशासन ने यदि अफगानिस्तान से निकलने में हड़बड़ी दिखाई तो भारत के लिए चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। दुनिया जहान में आज संदीप सोनी इसी अफगानिस्तान की चर्चा कर रहे हैं।
दुनिया जहान,
शरायत काबुल फिलहाल
काबुल में आप कह नहीं सकते कौन दोस्त है कौन दुश्मन। यहाँ अचानक कई धमाके और कई हमले हो जाते हैं।
लोग जब सुबह अपने घरों से निकलते हैं तो उन्हें मालूम भी नहीं होता कि शाम को घर लौटेंगे भी या नहीं।
बीते 18 वर्षों से अफगानिस्तान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा अमरीकी सैन्य मौजूदगी पर निर्भर रही है। साल 2001 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा है। राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय रूप से स्थिर अफगानिस्तान अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकता रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अब इस नीति को बदल रहा है।
अफगानिस्तान इज ए टोटल एंड कंप्लीट डिजास्टर। व्हाट आर वी डूइंग? Let's get with it. Get out of Afghanistan.
राष्ट्रपति बनने से पहले चुनाव लड़ने के दौरान ही ट्रंप ने कहा था कि वो अमरीकी सैनिकों को इराक और अफगानिस्तान से बाहर लाना चाहते हैं। इस बात पर उन्हें काफी समर्थन मिला क्योंकि अमरीका 2 दशकों तक चली इन 2 लड़ाइयों से थक चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में इसी बात को भुनाया और अब वो चाहते हैं कि अगले चुनाव से पहले अपना वादा पूरा कर दिखाएं। लेकिन ट्रंप प्रशासन थोड़ा जल्दबाजी में नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत बताते हैं,
तालिबान जिसके खिलाफ अमेरिका ने इतने सालों से लड़ाई लड़ी है, अब अमेरिका तालिबान को अफगान जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें शामिल करने को तैयार है और जो नेगोशिएशंस चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि किस कंडीशंस पर तालिबान पावर शेयर करेगा। बड़ा बदलाव आएगा वो ये आएगा कि जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी वो अब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होंगे उसका हिस्सा बन जाएगा।
अमेरिका और तालिबान के बीच 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। तालिबान का कहना है कि हम सिर्फ अमेरिका से बात करेंगे। तालिबान का तर्क ये रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार कठपुतली सरकार है। जानकार मानते हैं कि बदलते समीकरणों में सकारात्मक संभावना ये है कि अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ होगी, लेकिन आशंका यह है कि सरकार में आने के बाद तालिबान का रवैया बदलेगा भी या नहीं। तालिबान को सत्ता से हटाए जाने के बाद साल 2001 में अमेरिका के आने के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपने लिए एक नई भूमिका तलाशी।
तालिबान जिसको भारत रिकग्नाइज नहीं करता है वो पावर में अगर आएगा तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट भारत और अफगानिस्तान के संबंधों पर होगा।
इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान का महत्व एक बार फिर बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अमेरिका बुलाया है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दोबारा पाकिस्तान को मुख्य भूमिका में लाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के बिना तालिबान बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा। अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान अहम भूमिका अदा कर रहा है। पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका से भारत की परेशानी बढ़ सकती है। अफगानिस्तान में भारत के राजनयिक रहे विवेक काटजू बताते हैं,
अब एक नई स्थिति उत्पन्न होगी और उस नई स्थिति में भारत को अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए नई नीतियों का शायद उपयोग करना पड़े, और मेरा तो मानना है कि भारत को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। पूरी दुनिया बातचीत कर रही है तो हम क्यों बातचीत से वंचित रहें।
अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा आज भी तालिबान के नियंत्रण में है। दिक्कत यह है कि अफगान नेशनल आर्मी अभी तक मजबूती से उभर नहीं पाई। उसे आज भी अमेरिका की जरूरत है, जबकि तालिबान को पाकिस्तान से मदद मिलती रही।
पाकिस्तान की भूमिका तो अभी भी है और बढ़ेगी भी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान तालिबान को डिलीवर करें, और अब उन पर प्रेशर बहुत है। अब थोड़ा डिप्लोमेटिक खेल चल रहा है। 22 तारीख को जब ट्रंप और इमरान खान मिलेंगे तब देखना पड़ेगा कि किस तरह आगे बात बढ़ती है।
तालिबान के बारे में अफगानिस्तान के लोगों की राय अलग अलग है, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा लगता है कि अपना मन बना चुके हैं। अगले साल अमरीका में चुनाव होना है। जानकारों की नज़र में यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की वापसी का वादा जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान को ऐसी कोई जल्दी नहीं है। ट्रंप और तालिबान दोनों के नजरिए अलग अलग हैं। 40 साल पहले अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के आक्रमण के बाद देश में युद्ध खत्म करने के लिए आधे अधूरे समझौतों और विफल प्रयासों की एक लंबी फहरिस्त है। इतिहास गवाह है कि बातचीत की शुरुआत और समझौतों पर दस्तखत संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने की गारंटी नहीं देते। जाने अनजाने किसी भी वजह से अफगानिस्तान का मौजूदा घटनाक्रम यदि गलत दिशा में आगे बढ़ा तो शांति की उम्मीद ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। इसीलिए जानकार मानते हैं कि तालिबान अफगान सरकार और अमेरिका के लिए 4 दशकों से जारी लड़ाई को खत्म करने का ये सुनहरा मौका है। संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
और सभा समापन से पहले एक बार फिर मुख्य समाचार।
BBC समाचार। कुलभूषण जाधव मामले में नीदरलैंड्स की हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फांसी पर रोक जारी रखते हुए पाकिस्तान से इस पर फिर से विचार करने को कहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस फैसले को अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। अमरीका तुर्की को नेटो के F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर रहा है, क्योंकि तुर्की ने रूस से मिसाइलें खरीदने का फैसला किया है। पेंटागन का कहना है कि इस डील से को रद्द करने से अमरीका को $60 करोड़ का नुकसान होगा। कांगो गणराज्य में इबोला के प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रभावित इलाकों की सीमाओं को सील नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान होगा।
अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने मैक्सिको के कुख्यात ड्रग्स तस्कर ख्वाकीन अल चेपो को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी गुरप्रीत कौर। इसी के साथ ये सवाब यहीं समाप्त होती है। इस कार्यक्रम का तकनीकी संपादन किया तिलक भाटिया ने। अब आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे दिन भर में। तब तक के लिए अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।